एचडी स्मार्ट कास्ट।
यू आर लिसनिंग टू एन एचडी स्मार्ट कास्ट ओरिजिनल।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का एचडी स्मार्ट कास्ट की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे। समय का चक्र निरंतर चल रहा है। युग आए युग बीते, ना जाने कितनी बार सृष्टि बनी, प्रलय आई, सृष्टि नष्ट हुई और फिर से सृजन हुआ। परंतु एक चीज जो कभी नष्ट नहीं हुई वो है प्रेम, और प्रेम ही सदा सृजन का कारण रहा है और युगों युगों तक रहेगा। सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के प्रेम से होता है। प्रकृति स्वयं माँ आदि शक्ति है और पुरुष स्वयं महादेव हैं। त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश में सिर्फ महादेव और आदि शक्ति ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। भगवान शिव परमात्मा का प्रेरक स्वरूप हैं, जिन्होंने इस संसार को समस्त ज्ञान दिया। उन्होंने भाषा, व्याकरण, नाट्य, नृत्य, संगीत के साथ सच्चे प्रेम और एक आदर्श परिवार का ज्ञान भी संसार को दिया। समय समय पर लीलाएं रचाकर वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, प्रेरित करते रहते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते आए हैं। ऐसी ही एक लीला उन्होंने सतयुग में आदि शक्ति के साथ मानव को प्रेम समझाने और समस्त संसार को दैत्यराज तारकासुर से मुक्त कराने के लिए रची। तारकासुर ने अपने घोर तप से महादेव को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान लिया कि वो असुरों का राजा होगा तथा शिव पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई उसे मार नहीं सकेगा। उन्होंने अपनी लीला से संसार को समझाया कि सच्चे प्रेम से मनुष्य परमात्मा को भी पा सकता है। सच्चा प्रेम वही है जो सबका कल्याण करे। आपको ब्रह्मांड की अद्भुत प्रेम कहानी सुनाती हूँ। इसमें अत्यंत प्रेम, तप, विरह, बिछो और अंत में प्रेम की जीत का सुंदर संदेश है। इस प्रेम कहानी से समस्त संसार को उनके 51 शक्ति पीठ मिले, जहां उनके हर कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहां शिव शक्ति आज भी मानव कल्याण के लिए पिंड और भैरव रूप में विद्यमान है। बात सतयुग की है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनके मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके आद्या शक्ति भगवती शिवा देवी को प्रसन्न किया। देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए।
ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय।
पुत्र दक्ष, पुत्र दक्ष, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो?
धन्य हुआ मैं माता आपका दर्शन पाकर। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लीजिए।
तथास्तु पुत्र, मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब तुम्हारे द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा, तब मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम वापस चली जाऊंगी और अपनी देह से इस संसार की दैत्यों से रक्षा कर जन कल्याण करूंगी।
कुछ समय बाद प्रकृति स्वरूपिणी भगवती शिवा देवी ने दक्ष पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। वो अत्यंत सुंदर थी।
मेरी ये पुत्री पवित्रता की पराकाष्ठा है, अतः इसका नाम सती होगा।
देवी सती करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान आभा वाली थी। उनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों से परे है। देवी शिवा कन्या रूप से बाल लीला कर माता प्रसूति और दक्ष के मन को आनंदित करने लगी तथा उनकी तपस्या के पुण्य का फल उनको देने लगी। सती समस्त संस्कारों को सीखते हुए बड़ी हो गई। उनका रूप अवर्णनीय था। दक्ष मोहवश शिव के परम तत्व को ना समझकर उन्हें शमशानवासी भिक्षुक मानते हुए उनके प्रति निरादर भाव रखते थे। वो हमेशा कहते कि
शिव की पूजा हमारे राज्य में नहीं होगी, वो शमशानवासी ढोंगी यज्ञ भाग का कभी अधिकारी नहीं हो सकता।
परंतु सती के मन में शिव के लिए जिज्ञासा बढ़ने लगी और प्रेम का रूप लेने लगी। पूरा ब्रह्मांड उन्हें मिलाने के लिए लीलाएं रचने लगा। सती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप करने लगी। इधर तारकासुर ने भगवान शिव से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों हो। वो अमरत्व के अहंकार में आकर पृथ्वी पर त्रास मचाकर अपना अधिकार जमा रहा था। सभी देवता और माता धरती उस दैत्य से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान शिव को विवाह हेतु मनाने के लिए प्रार्थना करने लगे।
प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करें। प्रभु,
तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है।
उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और पृथ्वी पर भी अधिकार कर रहा है।
सभी देवताओं की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं।
चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु,
उसकी मृत्यु हेतु शिव शक्ति पुत्र का उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ आप ही महादेव को विवाह के लिए मना सकते हैं।
हमारी विनती स्वीकार करें। प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करें।
तथास्तु, हम महादेव से बात करके उन्हें विवाह के लिए मनाने का प्रयास करेंगे।
भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें विवाह के लिए मनाते हैं। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते हैं कि इस विवाह का अंत बहुत कष्टदायक होगा, इसलिए वो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानते।
प्रभु,
बताएं नारायण।
प्रभु, समस्त संसार और समस्त देवता इस समय आपके और मां शक्ति के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आपको माता सती से विवाह करना ही होगा।
हाँ प्रभु, सभी देवतागण भी आस लगाए हैं, आपके विवाह से ही संभव है।
भगवान शिव भी देवी सती से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उन्हें कभी कष्ट ना हो इसके लिए वो उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करते थे। परंतु ब्रह्मा और विष्णु के निवेदन को वो अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। अंततः इस विवाह के लिए वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं।
आपके कहने से जगत के कल्याण के लिए मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा, किंतु यदि सती को कोई कष्ट पहुंचा या उनका अहित हुआ तो उसका दायित्व आपका होगा।
उधर दक्ष शिव से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे। वे अज्ञानवश शिव को अपने अधीन समझते थे और उनसे घृणा करते थे। शिव के परम तत्व को ना जानकर उन्हें शमशानवासी भिक्षुक मानते हुए उनके प्रति निरादर भाव रखते थे। वे सती का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र किसी और से कर देना चाहते थे, जिससे सती के मन में शिव के प्रति प्रेम समाप्त हो जाए। सती की स्वीकृति के विरुद्ध दक्ष ने उनका स्वयंवर रचा, जिसमें देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि सभी उपस्थित थे। सती अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी और उनका मन नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की और कहा,
हे महादेव, स्वयंवर में मैं आपका ही वरन करूंगी, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। कृपा करें महादेव। मेरे स्वयंवर में आएं और मुझसे विवाह करें।
सती ने शिव विहीन स्वयंवर सभा में नमः शिवाय कहकर वरमाला भूमि को समर्पित कर दिया। ऐसा करते ही दिव्य रूपधारी महादेव वहां प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। दक्ष इस बात से तिलमिला उठे। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें समझाया। विष्णु बोले,
महादेव के साथ सती का विवाह उनके जन्म से पहले ही निश्चित हो गया था। अब समझदारी इसी में है कि वैवाहिक विधि विधान से पानी ग्रहण कराया जाए।
अनमने मन से दक्ष ने सती और शिव का विवाह करवाया। विवाह पश्चात वे दोनों कैलाश चले गए। परंतु जब सभा में उनके जमाता शिव ने नमन करने के स्थान पर आशीर्वाद दे दिया, तभी से दक्ष के मन में शिव के प्रति क्रोध, वैर भाव और भी बढ़ गया। परंतु भोलेनाथ उनके लिए भी निर्विकार भाव रखते थे। अब कनखल से देवी सती की विदाई होने के साथ साथ दक्ष का दिव्य ज्ञान भी लुप्त हो गया। उस लुप्त ज्ञान को पुनः अर्जित करने के लिए और शिव से वैर भाव में उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ की तैयारियों के समय सभी ने दक्ष को समझाया कि महादेव की आहुति के बिना कैसे संभव होगा ये यज्ञ। महर्षि दधीचि और देवऋषि नारद के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और वे शिव निंदा में दिन रात रत रहे। माँ सती ने रोहिणी और चंद्रमा को दक्ष यज्ञ में जाते देखा तो उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब चंद्रदेव ने दक्ष यज्ञ की बात उनको बताई। इस बात से देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ और वे महादेव से बोली,
महादेव, पिता दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। वहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व आदि सभी को आमंत्रित किया है। हमें भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि आपके बिना तो कोई भी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता।
सती, जब आपके पिता दक्ष ने हमें बुलाया ही नहीं तो हम वहां कैसे जा सकते हैं? हमारा वहां जाने का क्या उद्देश्य? देवी, दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं, ये उनका यज्ञ है। आप भी संयम रखें, उनकी जैसी इच्छा है आप उन्हें वैसा ही करने दें, इसी में सबका हित है।
इस पर देवी सती ने अपने मन में सोचा कि
भगवान शंकर तो परम योगी है, उनके लिए मान क्या अपमान क्या, परंतु महादेव के बिना अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो उनके प्रति लोगों में आस्था का भाव कम हो जाएगा। अतः मुझे इस अनर्थ को रोकना होगा, मुझे अवश्य जाना होगा पिता के पास।
फिर देवी सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी।
स्वामी, वो मेरे पिता का घर है, हमें भी चलना चाहिए।
दक्ष ने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है प्रिय, बिना बुलाए कहीं भी जाने से अपने मान का नाश होता है, जो मृत्यु के समान है, और वहां फिर से मेरी निंदा भी होगी। मैं अपनी निंदा तो सह जाऊंगा, लेकिन सती, मैं तुम्हारी निंदा नहीं सह पाऊंगा। विवाह के पश्चात तुम्हारा अपने पिता के घर बिना आमंत्रण के जाना सही नहीं, तुम्हारा अहित हो सकता है।
महादेव, वो मेरे पिता हैं, पिता के घर जाने से कैसी निंदा या कैसा अहित। मैं अपने पिता के घर अवश्य जाऊंगी और उनसे बात भी करूंगी। यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही कनखल चली जाऊंगी।
सती, हट ना करो, तुम्हारा अहित हो सकता है। सती, नारी हट सदैव विनाश तुल्य ही रहा है, मान जाओ सती, रुक जाओ।
स्वामी, आप समझते क्यों नहीं, पिता के घर पुत्री का अहित नहीं होता, और मैं तो उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ, मैं अवश्य जाऊंगी।
रुक जाओ सती।
मुझे मालूम है आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहाँ मैं सुरक्षित रहूंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि पिता के घर जाने से मेरा अहित होगा, तो आपको मेरी सौगंध है कि यदि मेरा अहित हुआ तो आप अहित हो जाने के बाद ही आइएगा। महादेव, या तो मैं आपको यज्ञ भाग दिलाऊंगी, नहीं तो मैं अब इस यज्ञ का ही नाश कर दूंगी। कृपया आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें।
सती, आप क्या कह रही हो? अहित होने के बाद आपके पास आने से मैं भी घटी हुई घटना को बदल नहीं सकता। यदि आपने जाने का निर्णय ले ही लिया है तो आप जा सकती हैं। नंदी, आप सभी गणों को लेकर माता सती के साथ कनखल की ओर प्रस्थान करें। सती, आप इस समय इतना हटी हो गई हैं कि आपको अपने पति की बात भी समझ नहीं आ रही। होनी आपको बुला रही है।
इतना सुनने के बाद सती महादेव को नमन कर अपने मायके कनखल की ओर प्रस्थान करती हैं। सती के कैलाश से प्रस्थान के बाद ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को लेने कैलाश जाते हैं और उनको साथ चलने को कहते हैं। शिव फिर से उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं बुलाया है, पर मेरी सती वहां गई है, उसका ध्यान रखना, उसका अहित मत होने देना। ये कह शिव उन दोनों को यज्ञ में जाने को कहते हैं। भोले भंडारी की महिमा ऐसी ही है, वो जगत पिता हैं। उनके समक्ष कोई भी खड़ा हो, बिना भेदभाव वो सबको आशीर्वाद देते हैं। भले ही दक्ष उनसे वैर भाव रखते थे, किंतु भोलेनाथ उनके लिए भी निर्विकार थे। आखिर भोले तो भोले ही हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कहीं सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है। इसमें महादेव की आवाज RJ रघु रफ्तार ने, विष्णु की आवाज विपिन सिंह ने, दक्ष की आवाज RJ शरत ने, सती और आदिशक्ति की आवाज दीक्षा ने और ब्रह्मा की आवाज आशीष भूसाल ने दी है।
This was an HT Smartcast original.
HT Smartcast.